थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से होशे नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है छुटकारा देने वाला। श्रोताओ, हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रियों और मित्रों के साथ तैयार बैठे हैं, ताकि आज हम फिर से परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने जीवन में आशीष प्राप्त कर सकें। इस समय मैं आप सभी श्रोता भाई बहनों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से होशे नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि इसराइल के राजा और हाकिम वे भी पाप में शामिल थे, यहां तक कि वे बुराई करने से आनंदित होते थे। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 8 से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगे। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है, ताकि प्रभु हम इस पृथ्वी पर जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं। सुबह से लेकर के इस समय तक आपने हम में से हर एक को संभाला है। इस घड़ी जब हम आपके वचनों में से सुनना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आप अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब हम आपके वचन में से सुनते और सीखते हैं तो निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। विशेष करके हमारे उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना है जो बीमार हैं, निराश और परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं। पिताजी, आप उन पर कृपा दृष्टि करें, उन्हें शांति दें, उन्हें चंगाई और छुटकारा दें, ताकि आज का वचन उनके जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाए। हम सबों को भी आप आशीषित कीजिए, आज के वचन पर अपनी विशेष आशीष प्रदान कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हम होशे नबी की पुस्तक उसके 8 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। इस अध्याय का विषय है इसराइल के सोने के बछड़े और पाप की वेदी। जी हाँ मेरे प्रियो, आपको जैसा पता है कि परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं को, जैसा हम देख चुके हैं, वर्तमान परिस्थिति से संबंधित संदेश देते थे, परंतु उसके संदेश दूर भविष्य से भी संबंध रखते थे, हमसे भी आगे के समय से। यह संबंध इस प्रकार से है कि हमसे भी आगे जो भावी बातें घटित होने वाली है उसको भी उन्होंने कहा है। उनका संदेश इसराइल के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी प्रासंगिक है। हमारे लिए होशे और यिर्मयाह की भविष्यवाणियां सबसे अधिक महत्व रखती है। दोनों ही ने अपने अपने देश के पतन के संबंध में भविष्यवाणियां की थी। उनके संदेश हमारे लिए खतरे की घंटी होना आवश्यक है, परंतु मैं दुख के साथ कहता हूं कि हम पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मुझे डर है कि हमारे लिए भी परमेश्वर का दंड अवश्यंभावी है। इसराइल सोने के बछड़ों और पाप की वेदियों की पूजा में था। इसराइल परमेश्वर को त्याग कर अपने राजा और अपने धन धान्य पर निर्भर था कि वह उन्हें बचा लेंगे। उनको ऐसा लग रहा था कि उनके साथ कोई है। तो आइए अब हम पढ़ेंगे होशे नबी की पुस्तक 8 अध्याय उसके 1-4 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, अपने मुंह से नरसिंगा लगा, वह उकाब के समान यहोवा के घर पर झपटेगा, क्योंकि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। वे मुझसे पुकार कर कहेंगे, हे हमारे परमेश्वर, हम इस्राएली लोग तुझे जानते हैं, परंतु इस्राएल ने भलाई को मन से उतार दिया है। शत्रु उसके पीछे पड़ेगा, वे राजाओं को ठहराते रहे, परंतु मेरी इच्छा से नहीं, वे हाकिमों को भी ठहराते रहे, परंतु मेरे अनजाने में। उन्होंने अपना सोना चांदी लेकर मूर्तें बना ली, जिससे वे ही नष्ट हो जाएं। लिखा है, मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। परमेश्वर उन्हें बंधुआई में भेजने का कारण भी यहां पर बता रहा है। इससे पहले परमेश्वर ने उनके पापों का उल्लेख किया था और कहा था कि उन्होंने उसकी आज्ञाओं को तोड़ा है। उनके पाप के कारण उनके साथ बांधी गई परमेश्वर की वाचा भी तोड़ी गई थी। अब्राहम के साथ बांधी गई वाचा, मूसा के साथ बांधी गई वाचा उनके साथ भी प्रभावी थी। मूसा की वाचा में परमेश्वर ने स्पष्ट किया था कि यदि वे उसकी सेवा करेंगे तो वह उन्हें आशीषों से मालामाल कर देगा, परंतु यदि वे चूके तो प्रतिज्ञा के देश से बाहर कर दिए जाएंगे। परमेश्वर ने दाऊद के साथ भी वाचा बांधी थी। वे तो वाचा को निभा नहीं पाए, परंतु परमेश्वर वाचा को निभाएगा। मेरे मित्रों, अब्राहम और दाऊद के साथ बांधी वाचा शर्त रहित थी, परंतु मूसा के साथ बांधी वाचा की शर्तें थी। यदि उन्होंने वाचा तोड़ी तो दंड पाएंगे, वे देश से बाहर किए जाएंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर उनसे उस देश का सदाकालीन अधिकार छीन लेगा। परमेश्वर केवल दोषी पीढ़ी को देश से बाहर करेगा और दूसरी पीढ़ी को स्वदेश लौटा लाएगा। मिस्र से निकल आने के बाद ऐसा ही हुआ था। उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने से संकोच किया। परमेश्वर ने कहा कि वे उस देश में प्रवेश नहीं करेंगे, उनकी आने वाली पीढ़ी ही वहां जाएगी। इसलिए हम पढ़ते हैं, वे राजाओं को ठहराते रहे, परंतु मेरी इच्छा से नहीं। परमेश्वर ने दाऊद के वंश को राजा होने के लिए चुना था। यारोबाम ने विद्रोह किया और उसके उत्तराधिकारी परमेश्वर का भय मानने वाले नहीं थे और उन्होंने प्रजा को परमेश्वर की आराधना के लिए प्रेरित नहीं किया। वे सब मूर्ति पूजा करने लगे। यारोबाम ने तो आरंभ ही में 2 सोने के बछड़े बनाकर सामरिया और बेतेल में रखवा दिए थे कि उसकी प्रजा आराधना के लिए मंदिर में यरूशलेम ना जाए। परमेश्वर ने उन्हें इसलिए भी दंड दिया कि उन्होंने परमेश्वर की स्वीकृति के विरुद्ध राजा रखे। होशे 8 अध्याय के 5 पद में लिखा हुआ है, हे शोमरोन, उसने तेरे बछड़े को मन से उतार दिया है, मेरा क्रोध उन पर भड़का है, वे निर्दोष होने में कब तक विलंब करेंगे? वे दोषी थे, वे पापी थे, वे निर्दोष नहीं थे। इसलिए वह कहता है, हे शोमरोन, उसने तेरे बछड़े को मन से उतार दिया है। जी हां, राजा आहाब के पिता ने सामरिया शोमरोन को राजधानी बनाया था। आहाब ने फिनीके के पुजारी की पुत्री इजेबेल से विवाह किया था। वह बाल का पुजारी था। इजेबेल हजारों बाल पुजारी इसराइलियों में ले आई थी, जिसके कारण इसराइली भी बाल की पूजा करने लगे थे, अर्थात बाल देवता की पूजा करने लगे थे। तब हम पढ़ते हैं कि मेरा क्रोध उन पर भड़का है, परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया और सामरिया आज तक उजाड़ पड़ा है। हमने वहां का तस्वीर देखा है, निसंदेह वह एक अत्यधिक रमणीय स्थान है, परंतु उजाड़ पड़ा है, भयानक दृश्य है। वहां हाथी दांत के महल हैं। पुरातत्व वैज्ञानिकों के अनुसार वहां हाथी दांत की अति सुंदर इत्र की बोतलें मिली हैं और अनेक अन्य हाथी दांत की वस्तुएं भी पाई गई हैं। मेरे साथी वहां के विनाश का दृश्य देखकर हताश हुए थे। जी हां, वहां सुंदर इमारतें थी और वह स्थान भी सुंदर था, परंतु बछड़े की पूजा के कारण परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। होशे नबी की पुस्तक 8 अध्याय उसके 6 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, यह इसराइल से हुआ है, एक कारीगर ने उसे बनाया, वह परमेश्वर नहीं है, इस कारण शोमरोन का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मेरे मित्रों, वहां की खुदाई में वह सोने का बछड़ा नहीं मिला, शायद उसे वहां से हटाकर तोड़ दिया गया था या पिघला दिया गया होगा। परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम मुझसे विमुख होकर इसकी पूजा करते हो, यह परमेश्वर नहीं है और न ही इसमें तुम्हारी सहायता करने की शक्ति है। होशे 8 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लाएंगे, उनके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं, न उनकी उपज से कुछ आटा होगा, और यदि हो भी तो परदेशी उसको खा डालेंगे। मेरे प्रियो, यह पद परमेश्वर के दंड के बारे में है। अकाल और बैरी का आक्रमण दोनों परमेश्वर के दंड के साधन थे। होशे 8 अध्याय के 8 पद में लिखा है, इसराइल निगला गया, अब वे अन्य जातियों में ऐसे निकम्मे ठहरे जैसे तुच्छ बर्तन ठहरता है। लिखा है, इसराइल निगला गया। क्या आप जानते हैं कि ये 10 गोत्र आज कहां हैं? कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका वासी एप्रेम का गोत्र है। मैं इससे बड़ी मूर्खता और नहीं देखता। यहां एप्रेम के लिए केवल दंड की घोषणा की गई है, इसलिए हम पढ़ते हैं, अब वे अन्य जातियों में ऐसे निकम्मे ठहरे जैसे तुच्छ बर्तन ठहरता है। आज हम इसराइल के गोत्रों को पहचान नहीं सकते हैं। मेरे विचार में वे यहूदा के गोत्र के साथ मिल गए जब वे बेबीलोन की बंधुआई से लौटे। आज वे संपूर्ण विश्व में बिखरे हुए हैं। मेरे प्रियो, न्यूयॉर्क शहर में इतने यहूदी हैं जितने इसराइल में भी नहीं हैं। इसराइल से 4 गुना अधिक यहूदी विदेशों में रहते हैं। होशे 8 अध्याय के 9 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वे अशूर को ऐसे चले गए जैसा जंगली गधा झुंड से बिछुड़ के रहता है। एप्रेम ने यारों को मजदूरी पर रखा है। यह एक और मुख्य कारण है कि परमेश्वर ने इसराइल को दंड दिया। यह कैसी निंदा है, वे जंगली गधे के समान हो गए थे। उन्होंने अशूरों को घूस देकर अपनी ओर करना चाहा। लिखा है, एप्रेम ने यारों को मजदूरी पर रखा है। उन्हें पता चला कि वे अशूरों को पैसों से खरीदना ही चाहते हैं, और इतना ही नहीं परंतु वे यह भी जानते हैं कि वे उन्हें खरीद नहीं पाएंगे। परमेश्वर अशूरों द्वारा ही उन्हें दंड देगा। होशे नबी की पुस्तक 8 अध्याय उसके 10 और 11 पद में हम आगे पढ़ते हैं, यद्यपि वे अन्य जातियों में से मजदूर बनाकर रखें तो भी मैं उनको इकट्ठा करूंगा, वे हाकिमों और राजा के बोझ के कारण घटने लगेंगे। एप्रेम ने पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाई हैं, वे ही वेदियां उसके पापी ठहरने के कारण ठहरी हैं। लिखा है, वेदी आराधना का स्थान था, परमेश्वर ने इसराइल को आराधना के लिए वेदी दी थी। विश्वासियों के पास स्वर्गिक वेदी है। परमेश्वर का सिंहासन हमारे लिए अनुग्रह का आसन है, जहां हमारा महायाजक प्रभु यीशु हमारे लिए विनती करता है। वेदी है तो वास्तव में आराधना का स्थान, परंतु परमेश्वर कहता है एप्रेम ने पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाई हैं। वे ही वेदियां उनके पापी ठहरने का कारण ठहरी। इसराइल मूर्ति पूजा करने लगा था, वे उसकी क्या सहायता करती? परिणाम स्वरूप उसे दंड मिला। मेरे मित्रों, धर्म इस संसार में सबसे अधिक निंदा का कारण है। धर्म ने किसी का भला नहीं किया है। धर्म के कारण किसी का भला नहीं हुआ है। धर्म ने मानव जाति को लाचार और दोषी ही ठहराया है। केवल प्रभु यीशु ही हमारा उद्धार कर सकता है। होशे नबी की पुस्तक 8 अध्याय उसके 12 पद में लिखा हुआ है, मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूं, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। लिखा है वे उन्हें पराया समझते हैं, अर्थात वे परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं जानते। परमेश्वर कहता है मैं उन्हें अपना लिखित वचन देता हूं, परंतु उनके लिए वह अनजान है, वे उसको नहीं जानते हैं। यह इसराइल का दोष था और हमारा भी है। यही कारण है कि हम परमेश्वर के वचन के शिक्षण के लिए समर्पित हैं। कलीसिया का सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम है कि वह परमेश्वर का वचन सुनाए। मेरी समझ में तो पादरीगणों को व्यवस्थापक होने की आवश्यकता नहीं है। वह सामाजिक देव होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, जी हां, कि मनुष्यों में उठें और बैठें। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वह प्रचार मंच पर खड़ा होकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है या नहीं। मैं तो कभी नहीं चाहता कि अपना किसी मुक्त विचारक को सहयोग दूं। यदि वह वचन सुनाए तो आप अवश्य ही उसका साथ दें। इस देश में परमेश्वर के वचन के प्रचारक की भी कमी है, यद्यपि कि बहुत प्रचारक हैं और मनुष्य उनका वचन सुनता है, परंतु हम लोगों की सेवा ऐसी है जैसे बाल्टी में एक बूंद पानी। हमारा देश परमेश्वर के वचन का अज्ञानी है, और यही कारण है कि होशे कहता है कि मेरे लोग मेरे ज्ञान की कमी के कारण नाश हो रहे हैं। होशे की पुस्तक 8 अध्याय के 13 पद में लिखा है, वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं और पशु बलि भी करते हैं, परंतु उसका फल मांस ही है, वे आप ही उसे खाते हैं, परंतु यहोवा उनसे प्रसन्न नहीं होता। अब वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा, वे मिस्र में लौट जाएंगे। मेरे मित्रों, वे विधि का पालन करते हैं, वे अनुष्ठान पूरा करते हैं, बस यही था। परमेश्वर उन्हें जानता था और उन्हें ग्रहण नहीं किया। आप में से अनेक जन रूढ़िवादी शब्दावली जानते हैं। वे जानते हैं कि कब जय मसीह की कहें और कब कहें प्रभु आपको आशीष दे। ये अद्भुत अभिव्यक्तियां हैं, परंतु कुछ लोगों के मुंह में तो अर्थहीन होती है। परमेश्वर उन्हें स्वीकार नहीं करता है, इसलिए कहता है अब वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। जी हां, ऐसा प्रतीत होता है कि जब बेबीलोन ने अश्शूर देश को नष्ट किया था, तब उन 10 गोत्रों में से अनेक बेबीलोन में यहूदा के साथ मिलकर इसराइल लौट आए थे। यर्मिया की पुस्तक से विदित होता है कि बेबीलोन के आक्रमण के बाद अनेक यहूदावासी मिस्र चले गए। मेरे विचार में होशे इसी की चर्चा कर रहा है। अनेक अच्छे टीकाकार यहां मुझसे सहमत नहीं होंगे। हम पढ़ते हैं होशे 8 अध्याय के 14 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि इसराइल ने अपने कर्ता को भुलाकर महल बनाए, और यहूदा ने बहुत से गढ़ वाले नगरों को बसाया है, परंतु मैं उनके नगरों में आग लगाऊंगा और उससे उनके गढ़ भस्म हो जाएंगे। परमेश्वर कहता है, क्योंकि इसराइल ने अपने कर्ता को भुलाकर महल बनाए, उन्होंने यरूशलेम के मंदिर के विकल्प स्थापित किए। परमेश्वर ने कहा था कि केवल मंदिर ही में वे बलि चढ़ाएंगे। यहूदा ने बहुत से गढ़ वाले नगरों को बसाया है। यहूदा ने भी पाप किया था, परमेश्वर उन्हें भी दंड देगा, परंतु इसराइल के साथ नहीं। सबसे पहले परमेश्वर इसराइल के मंदिरों को नष्ट करेगा। और रोचक बात तो यह है कि इसराइल का उत्तरी क्षेत्र सबसे अधिक उजाड़ है, नेगेब में तो वर्षा होती ही नहीं है, अतः वह क्षेत्र उजाड़ तो हो ही गया है, परंतु एस्ड्रेलन जैसा क्षेत्र जो संसार की सबसे समृद्ध जगह है, उसका उजाड़ होना अनहोना है। आज हर जगह परमेश्वर के दंड का प्रकोप दिखाई देता है। मेरे प्रियो, इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 8 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 9 से जारी रखेंगे। हम देखेंगे इसराइल भूमि की उपज पर निर्भर करता है। इसराइल के विचार में उनका देश समृद्ध था, इसलिए सब अच्छा था। दूसरे शब्दों में वे उत्पाद बढ़ाकर मुद्रास्फीति की दर बढ़ा रहे थे। परमेश्वर कहता है कि वे हठीली कलोर से अधिक नहीं थे। परमेश्वर ने इसराइल को समृद्धि प्रदान की थी, इसलिए वे सोचते थे कि सब अच्छा है, और अपनी आत्मिक दुर्दशा के प्रति वे अंधे थे। उनकी वास्तविक दशा तो यह थी कि वे बंधुआई में जाने वाले थे। यह उन्हें परमेश्वर का दंड था। आइए हम पढ़ें होशे 9 अध्याय उसके 1 पद। लिखा हुआ है, हे इसराइल, तू देश देश के लोगों के समान आनंद में मगन मत हो, क्योंकि तू अपने परमेश्वर को छोड़कर वेश्या बनी। तूने अन्न के हर एक खलियान पर छिनाले की कमाई आनंद से ली है। वह कहता है, हे इसराइल, तू देश देश के लोगों के समान आनंद में मगन मत हो। वे पाप अधिक करते थे और आनंद कम लेते थे, इसलिए वह कहता है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर को छोड़कर वेश्या बनी। परमेश्वर कहता है कि इसराइल ने वेश्या का सा व्यवहार किया है। तूने अन्न के हर एक खलिहान पर छिनाले की कमाई आनंद से ली है। दूसरे शब्दों में इसराइल अपना उत्पाद बढ़ाने का प्रयास कर रहा था, परंतु वह उसके लिए दंड सिद्ध हुआ। वहां बहुत भोजन था, परंतु शराब थी। सबने इसराइल को धोखा दिया। मेरे मित्रों, इसराइल में झूठी समृद्धि थी और वे परमेश्वर से बहुत दूर थे। कभी कभी परमेश्वर समृद्धि का दंड भी देता है, जैसे उसने इसराइल के साथ किया। उसने इसराइल से कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, परंतु तुम उसे अपनी योग्यता कहते हो। तुम लोग घमंड से भर गए हो। तुम ना तो मुझे निहारते हो और ना ही मुझे श्रेय देते हो। यह इसराइल का चित्रण है। होशे 9 अध्याय के 2 पद में लिखा हुआ है, वे ना तो खलिहान के अन्न से तृप्त होंगे और ना कुंड के दाख मधु से, और नए दाख मधु के घटने से वे धोखा खाएंगे। दूसरे शब्दों में बहुतायत के स्थान पर कमी होगी। आगे हम पढ़ते हैं होशे 9 अध्याय के 3 पद में लिखा हुआ है, वे यहोवा के देश में रहने ना पाएंगे, परंतु एप्रेम मिस्र में लौट जाएगा और वे अशूर में अशुद्ध वस्तु में खाएंगे। लिखा है, वे यहोवा के देश में रहने ना पाएंगे। मेरे मित्रों, परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि वह उन्हें देश से बाहर कर देगा। वह कहता है कि वह अब्राहम, मूसा और दाऊद के साथ बांधी हुई वाचा को कभी नहीं भूलेगा। उनका उस देश में रहना उनकी आज्ञाकारिता पर निर्भर करेगा। अब वह उन्हें देश से विस्थापित करेगा। कहता है, वे अश्शूर में अशुद्ध वस्तुएं खाएंगे। जी हाँ, वे परमेश्वर से दूर होकर व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे थे। अतः परमेश्वर कहता है, मैं उन्हें वास्तव में अशुद्ध करूंगा। वे पाप अधिक करते थे और आनंद कम लेते थे। मेरे विचार में आज यह स्थिति विश्वासियों की है। मुझे एक बार एक व्यक्ति ने कहा, मैं हर एक बात से ऊब गया हूं, मैं पाप से ऊब गया हूं, इसी कारण मैं आज आपकी सभा में आया हूं। वह पाप तो बहुत करता था, परंतु उसे आनंद नहीं मिलता था। होशे 9 अध्याय उसके 4-6 पद में हम पढ़ते हैं, वे यहोवा के लिए दाखमधु का अर्घ न देंगे और न उनके बलिदान उसको भाएंगे। उनकी रोटी शोक करने वालों का सा भोजन ठहरेगी। जितने उसे खाएंगे सब अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि उनकी भोजन वस्तु उनकी भूख बुझाने ही के लिए होगी। वह यहोवा के भवन में ना आ सकेगी। नियत समय के पर्व और यहोवा के उत्सव के दिन तुम क्या करोगे? देखो, वे नष्ट होने के डर के मारे चले गए, परंतु वहां मर जाएंगे और मिस्री उनके शव इकट्ठा करेंगे और मोप के निवासी उनको मिट्टी देंगे। उनकी मनभावनी चांदी की वस्तुएं बिच्छू पेड़ों के बीच में पड़ेंगी और उनके तंबुओं में झड़बेरी उगेगी। मेरे प्रियो, बंधुआई के बाद उनमें से अनेक लोग मिस्र चले गए थे, अपना देश से बाहर। वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी उपासना नहीं कर पाए। मेरे मित्रों, आज हम में से कई लोगों के जीवन ऐसे ही हैं। परमेश्वर ने हमें बहुतायत का आशीष दिया है, लेकिन हम उसे यह सोचकर परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं कि यह मेरी कमाई है। तो आइए आज के इस वचन के प्रकाशन में विचार करें कि यह मेरी कमाई नहीं, परंतु परमेश्वर का आशीष है, ताकि आप उसके निकट रहें, उसको धन्य कहें। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
पाप की लहरों से घिरा हुआ था, न कोई मंजिल और न किनारा, वो आया बनकर मेरा सहारा, वो आया बनकर मेरा सहारा। पाप की उबारा, पाप की लहरों से मुझे उबारा, यीशु है मेरा मुक्ति धार, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम, यीशु मेरा मुक्ति था, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम।